राम।
यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम।
नारायण ಪರಮ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ಸರ್ವಸ್ವಂದೇ ನಂದೇ ಪ್ರಪನ್ನಪಾರಿಜಾತಾಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮೇತ್ರೀಕಾಣಯ್ಯಾಮೂರ್ತಿ ವಸುದೇವ ಸುತಂದೇವಂ ಕಂಠಕಾನೂರ್ಮಧ್ಯ ನಂದೇ ಹರಿ ಪರಮಾನಂದ ವಂದೇ ಗುರು ವಂಶೀ ವಿಭೂಷಿತವರಾನ್ ನವನೀರುಲಾಭಾಸ್ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಬೋಲು ಸರ್ ಚಲೋ ಬಾತ್ ಹೋಯ್ ಅತ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಚಿಂತ ಅಹಂಕಾರ ಕೆ ಸಿವಾಯ ಅಪನೆ ಪಾಸ್ ಓರ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ इससे कोई अच्छा साधन हो परम तत्व को प्राप्त करने का तो कौन है और किस प्रकार किया जाए। आपको कोई पूछे कि आप हो कि मैं हूं, आपके होने में क्या मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, शरीर है, प्राण है, कौन प्रमाण है इसमें अपने होनापन में बताओ। बोलो। जिस भाई ने पूजा लिखा है वो कम से कम मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसा लिखा है, इनको जानते हैं तो आपका होना है मैं हूं इसमें होनापन के सिद्ध करने में क्या मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है अथवा प्राण है अथवा ज्ञानेन्द्रिया है अथवा कर्मेन्द्रिया है, क्या है इसमें। किसी बात को आप मान लेते हैं कोई बता देगा, कोई बात आप मान लेते हैं, कोई आप बात नहीं मानते तो वो मानते किस हैं आप। अपने आप को स्वीकार करते हैं और ऐसा कहते हो कि मैं तो विवाहित हूं, तो आप विवाहित है ये किस बात से मानते हैं। मैं तो कुमारा हूं किस बात से मानते हैं, क्या प्रमाण है इसमें। देखो प्रश्न करना हो तो खुलासा करके पूछने से ठीक समझ में आती बात, गोलमोल कहने से समझ में बात नहीं आती। पता नहीं है सर, अब कैसा प्रश्न है, लोग पूछने में नाम लगाने लगे थे, डरते हैं। अब क्या बताऊं उनको, और बात करते हो डरते हो, तो प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं होगा भाई। इनके सिवाय क्या है ऐसा विचार है तो उस विषय में सोचो, समझो, विचार करो। प्रश्न कर रहा तो प्रश्न उत्तर समझने की योग्यता भी चाहिए ना, जिज्ञासा भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए। अगर पूछता है कि इनके सिवाय और साधन क्या है तो वो साधन बताओ, अब किसको बताओ। बात गहरी जरूर है परंतु पूछा है तो कम से कम पूछने वाला तो बताओ तो सही नहीं। ये मन है, ये बुद्धि है, ये अहंकार है, ये चित्त है, जिसे हम ऐसा जानते हैं, ऐसे साधन करते हैं। सुबह जैसे बात थी भाई, कहना मान है तो देखो, धनी आदमी का कहना करेगा तो धन मिलेगा, विद्वान का कहना करेगा तो विद्या मिलेगी, संत महात्मा का कहना मानेगा तो संत महात्मा हो जाएगा। जिसके पास में जो चीज है उसका कहना मानने से उसकी चीज उसको मिलेगी, जो उसके पास में है। नौकरी करोगे तो जिसके पास पैसा है उसके पास नौकरी करने से वो राजी हो गया तो पैसा देगा कि नहीं, मिलेगा ही पैसा। आध्यात्मिक जगत की ऐसी बात है कि कहना मानते ही उसकी विलक्षणता आ जाती है और कहना न मानते ही आग लग जाती है। बस फिर जयराम जी जी, ये बहुत सूक्ष्म बात है। एक विलक्षण शक्ति आती है कहना मानते ही। जैसे किसी पिता ने कह दिया कि बेटा ये काम करो तो वो उसी क्षण करता है तो उसका बेहद विलक्षण असर पड़ता है, और वो थोड़ी देर ठहर बाद में करता है तो वो तत्व तो नहीं रहता है, और करता ही नहीं तो जयराम जी जी फिर कुछ नहीं। एक सामर्थ्य है, एक विलक्षण ताकत है। क्या काम सट किया ऐसा कहने करना वाला है उसका असर तीसरे आदमियों पर पड़ता है। कहने वाला राजी होता है, करने वाला बहुत राजी होता है, और तीसरे सुनने वाले विलक्षणता से राजी हो जाते हैं। विलक्षण आनंद आता है उनको भी, आंखें खुल जाती है, प्रकाश हो जाता है एकदम। एक कही दूसरे मानी, गोरख दे दोनों ही ज्ञानी, और एक कही और दूसरे उथापी, गोरख दोनों ही पापी। ऐसा आदमी कही क्यों, और कही तो फिर मानी क्यों नहीं मानी तो कही क्यों नहीं, तो कहने वाले को पता नहीं हो कह दी, आगे मानने चाहिए ना बात। कहने से मान लें, संकेत से मान लें, तो आध्यात्मिक जगत में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। भैंस होती है ना भैंस, वो भैंस भी बिना मन दूध नहीं देती, दूध देती नहीं। हमने देखी है गाय भैंस जब दाब कर तृप्त हो जाती है तब बच्चा आता है उसको दूध फेर देती है, लेकिन भैंस देखती है ना वो वही खड़ा है, भैंस का बच्चा नजदीक नहीं आता, भैंस के देख देती नहीं आता। जब वो पावसती है, जब दूध देती है, तो संत महात्मा पुरुषों से लाभ लेना चाहते हो तो भी कहना मानो, और नहीं लेना चाहते दूसरी बात क्या है, कहे बिना कैसे मिल जाएगा बताओ। कोई रुपया से चीज मिलती हो, पदार्थों से मिलती हो, किस चीज से, वस्तु से, रोटी से कोई चीज मिलती हो, किसी के बदले में मिलती हो तो वो बदल ले लो। और किसी से ही नहीं मिलती, ना रुपया पैसा मिलती है, ना कोई सही तरह से मिलती है, मिलती है केवल उनके मन के मुताबिक चलने से। वो प्रसन्न होते हैं। मैंने संतों से बातें सुनी है कि संत कहे क्या नहीं, संत से तो जोर जबरदस्ती बात कहला रहे, जो कहलाना चाहता है वो कहला ही लेता है। एक घटना याद आ गई, सुनी हुई है, मेरे सामने नहीं पहले पहले घटी हुई है। श्री जयदयाल जी बांकुड़ा थे, इनमें हनुमान भक्त जी गोविंद गायन के आपस में मित्र थे, ऐसे घनिष्ठ मित्र, छोटे छोटे बने से ही घनिष्ठ मित्र थे। वो तो चूरू में इनके पिताजी रहते थे, तो उनका तार आया, समाचार आया कि तुम आओ, जल्दी आओ। तो यहां से सेठ जी रवाना होने लगे बांकुड़ा से। तो हनुमान भक्त जी ने पूछा कि जदा क्या बात है, उनके बीमार कैसे हैं, शरीर है कि नहीं है, क्या पता है इस बात का, कि भैरू कि भैरू है अपनी भाषा ही, क्या पता भाई कैसा है। तो अच्छी तरह पूछ ले, टटोल लिया, सेठ जी ने उत्तर नहीं दिया। जब गाड़ी पर चढ़ गए, गाड़ी रवाना हुई, तब कहा कि जरा कागज देना, कागज कागज देना, राजखुशी का कागज देना। तो सेठ जी बोले कि कागज तो वो कह तो दूंगा। फिर हंसे, हंसकर बोले कि बड़ा बदमाश है, कहलाए नहीं, मेरे से बात कहलाए नहीं, तुम्हें कहेंगे तब जाएंगे तो जीता मिलेगा कि नहीं। बड़ा बदमाश है, मेरे से बात कहला ही नहीं। तो कहलाने वाला होता है वो कहला लेता है, ये तो है साधारण बात। पारमार्थिक तत्व की बात अगर सच्चा जिज्ञासु हो जाए, सामने आ जाए, तो बहुत तात्विक विलक्षण बात निकल जाती है उनके मुख से। ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरु गुह्यम अप्युत, गपत से गुप्त बात, बढ़िया से बढ़िया बात स्निग्ध से स्नेह रखता है, और शिष्य है वो जानना चाहता है, तो गहरी गहरी बात भी ब्रूयो कह देगा, वो सत कह देंगे। तो उनको करना क्या है, जबरदस्ती नहीं ले हो सकता, जबरदस्ती कोई ले रहे ये हाथ की बात नहीं है। वो तो एक खुशी से बात आती है, प्रसन्नता से, और प्रसन्नता होती है उनकी सेवा से। तब यदि परिपात है ना, परिप्रश्न है ना, सेवया, उस तत्व को कैसे समझो, गीता में कहा है तद विधि प्रणिपात है ना, ये तो पड़ा नमस्कार करे, एक सेवा करे, एक परिप्रश्न करे। तीन एक तीन बात बताई, और तीन बात अगर ही बताई, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संगीतेन्द्रिय, श्रद्धावान तत्पर और संगीतेन्द्रिय ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तीन साधन वो बताए, और ये भी तीन साधन बताए कि श्रद्धावान और तत्पर संगीत, श्रद्धावान लभते ज्ञान, तत्पर संगीतेन्द्रिय, और वो ही बताएगी तत्वी प्रणिपात है ना, परिप्रश्न है ना, सेविया। परंतु परिप्रश्न सेविया उपदेश शांति में उपदेश देंगे, उपदेश देने में ये हेतु है। परंतु श्रद्धावान तत्पर संगीत ज्ञान लभते, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो तीन साधन वहां, तीन साधन वहां है, इनमें बड़ा फर्क है। तब व्यक्ति प्रणय पाते हैं, लंबा पर नमस्कार कर रहे और सेवा करे और बड़ी स्पष्ट श्रद्धा से प्रेम से प्रश्न करे, पर इसमें कपट हो सकता है, चालाकी हो सकती है, पर श्रद्धावान तत्पर संगीत इंद्री में कपट नहीं चलेगा। इसमें तो भीतर की भाव होगा तभी होगा, तो भीतर का भाव होगा तो लभते ज्ञान में ज्ञान मिल जाएगा। और ऊपर की बात में नमस्कार करते हैं लंबा पड़ जा पूछे तो उपदेश दे देंगे, पर उसको मिल जाए ये नियम नहीं है। उपदेश ज्ञान सर्वदर्शी ज्ञानी है, उपदेश ज्ञान करेंगे क्योंकि प्रश्न करता है, प्रश्न के अनुसार उत्तर देंगे। परंतु प्रश्न करने वाला ज्ञान को प्राप्त कर रहे ये नहीं होगा, वो तो श्रद्धा ज्यादा होगी। और श्रद्धा की पहचान है तत्परता, उनके कहने के अनुसार उनके इशारे के अनुसार चलेगा, जीवन इधर उधर हो नहीं सकता, तो उसको तो प्राप्त हो ही जाएगी। तत्व भगवान की ऐसी एक कायदे की बात है, भगवान का नियम है कि जो श्रद्धा से पूछता है उसके उसके पूछने पर संत महात्मा पुरुष है तत्व की जीवन मुक्त श्रद्धा है भक्ति है तो उनके द्वारा वे कह ही रहेंगे कि बाध्य हो जाएंगे। भगवान की ऐसी विलक्षण शक्ति है कि जिनसे उनको कहना पड़ेगा, श्रद्धा है भीतर में, प्रेम है, श्रद्धा है, वे कह जैसे जैसे वैसे ही होता चला जाता है। श्रद्धा की व्याख्या करते थे सेठ जी, कहा करते थे मकान बनाया हुआ है, क्या मकान का है, क्या सोने का है, तो सोने का ही दिखने लग जाए, ये एक नंबर की श्रद्धा। दूसरे नंबर का सोने का है तो सोने का है कह दिया है, अगर ये कह दे सोने का तो सोने का हो जाए, और ये निकल गई है बात कब से, ये दो नंबर की है। और तीसरे में सोने का है जान जान बात कहते हैं तो सुनने को बना हुआ सोना कैसे है, ये तीन नंबर की बात। तो श्रद्धावान होता है उसको ज्ञान मिल ही जाता है, कोई अटकाव कर नहीं सकता, उसकी उन्नति में बाधा किसी ताकत नहीं वाला देते। ऐसा दीपक से दीपक जैसा हो जाता है, वह शक्ति से एक शक्ति आ जाती है, एक विलक्षण अलौकिक ताकत आती है, वो उनके मन के अनुकूल होने से आती है। बछड़ा जाकर गाय के थनों में मुंह देता है, चूमता है, तो शरीर में रहने वाला दूध तो सब थनों में आ जाता, टप हो जाएगा, एकदम आ जाता है। ऐसे ज्ञान जो संत पुरुषों का अनुभव है, जहाँ पूछने वाला तत्परता से पूछता है, आज्ञा पालन करता है, उसके अनुसार जीवन बनाता है, उसके सामने दूध टपके चू तब तो टपकने लगता है, बुद्धि में और स्वयं में अनुभव में वहां से चीज आ जाती है। स्वयं जो अनुभव है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, ये तो कर्ण है, अंतःकरण है, और इंद्रिया है वो कर्ण है, बाह्य कर्ण है, ये वो अंतःकरण है। कर्ण होता है वो औजार होता है, कर्ण तत्व नहीं होता है। जैसे कलम लिखो तो लिखना का एक साधन है, उसका नाम कलम है, कलम से लिखते हैं, कलम कर्ता नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये कर्ता नहीं है, ये अंतःकरण है, साधक है। साधक तमम कर्णम, जो कार्य क्रिया करने में अत्यंत उपकारक होता है उसको उस कर्म कहते हैं, साधन कहते हैं, उससे वो कार्य की सिद्धि होती है, तो क्रिया की सिद्धि होती है। अब परमात्म तत्व की प्राप्ति है वो क्रिया साध्य नहीं है, क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा तत्व की प्राप्ति नहीं होती, प्रकृति के त्याग से तत्व की प्राप्ति होती है। जड़ता है, इस जड़ता के द्वारा चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से चिन्मय तत्व मिलता है। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर तत्काल ही शांति मिलती है। तो त्याग होता है भीतर से, तो जैसे मैं हूँ, मैंने प्रश्न किया मैं हूँ, तो ये जो अपना होनापन है ये किसी कर्म से नहीं है, ये कर्म साध्य नहीं है, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, ना चक्षु है, ना कोई भी इंद्रिया नहीं है, ना ज्ञान इंद्रिया, ना कर्म कर्म इंद्रिया है, कोई नहीं पहुंचती। अपने होने की सत्ता स्वयं के अनुभव होती है, तो स्वयं का अनुभव करने से तत्व का अनुभव होता है, स्वयं विचार करने से। अर्जुन ने भी कहा, स्वयं एव आत्मना आत्मानम भेद तत्व पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम आत्मना आत्मानम स्वयं भेद, आप ही आप अपने को जानते हैं। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, तो कामना का त्याग कर दे, आत्मनि एव आत्मा स्थित प्रज्ञ सदस्य, आत्मा अपने से अपने आप में तुष्ट होता है, सब स्थित प्रज्ञ हो जाता है, अपने आप से अपने आप होता है। तो अपने आप वो बताया है कि जो पूछने वाले हैं, असली श्रद्धा रखे तत्पर से भी कहे जो भी काम करे वैसे ही करे, तो ये संत महात्मा पुरुष अपने आप को दे देते हैं, अपने आप को। अब उनका ना माने ही नहीं, चाहे लाभ हो जाएगा, मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है, कैसे लाभ हो जाएगा, कहना माने ही नहीं, नहीं लाभ हो जाएगा। भैंस भी दूध नहीं दे सकती, तब तो कैसे मिल जाएगा उसको, देगा तो नहीं मिलेगा, वो धने पर भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। सेठ जी कई दफे बातें होती, कई बार ऐसी होती, रात रात निकल जाती बातें करते करते, शाम को बैठते दोपहर के वक्त बैठे थे, दोपहर के वक्त गीता प्रेस्ट बगीची की बात है, तो बातें करते संध्या के वक्त संध्या कर लिया, भोजन कर लिया, फिर बैठ गए, सुबह संध्या करके ही उठे, संध्या करने के लिए सुबह सूर्योदय हो जाएगा, संध्या करो, रात और बातें हुई, ऐसी बातें निकलती। शेर जी पूछते कौन कौन है, फिर कम थी था उस समय पूछते, पहले देख लेते, फिर दृष्टि कम हो गई तो पूछते कौन कौन आदमी अमुक अमुक है, तो फिर बातें छिड़ती थी, एक आदमी भी ऐसा इधर उधर था, बात नहीं छिड़ती। वहां चैतन्य प्रभु की बात सुनी है मैंने, कि कीर्तन हो रहा था तो वो सब इकट्ठे हो गए, फिर काटे बंद करके सब इधर कीर्तन करते, तो एक दिन में कीर्तन जमा नहीं ठीक तरह से, देखो भी कौन आदमी है, कि कोई कोई नहीं दिखता मार के, बड़े रोजन आते हैं वही आदमी है, कि कोई इनको है, तो फिर नहीं गई थी पातक तक नीचे आदमी बैठा छिपा हुआ, ये है हम बढ़िया जिम नहीं सकता कीर्तन, हाथ की बात थोड़ी है कीर्तन ठीक से जम जाए, जब तक कोई चरक वाला भी मैं कुसर बैठा, ये क्या करते है इकट्ठे और क्या करते, ये देखने के लिए परीक्षा लेकर बैठा, कीर्तन नहीं जमा ठीक तरह से, तात्विक बातें निकलती नहीं आती नहीं, कहने वाला चाहे तो कह नहीं सकता, अगर नहीं कहने वाला चाहता है तो कहना आजे दी बात, जहाँ सुनने वाला होता है, एक भी सभा में सुनने वाला हो, कुत्र की एक भी न हो, ऐसे सुनने वाला केवल एक भी हो, जैसे सामान्य आदमी बैठे तो एक होने पर भी सभा में विलक्षणता आ जाती है। संत महात्मा अच्छे होते हैं, उनके आते ही सभा में फर्क पड़ जाता है, सभा का रंग बदल जाता है। दिल्ली की बात सुनी है, हरिबाबा से बड़ा सुंदर कीर्तन कराते थे, वृंदावन में स्थान है उनका, तो कीर्तन तो शेठ जी वहां पर गए थे, ये बात भी मेरी सुनी हुई है, गए तो हरि बाबा ने कहा मतलब सुनाओ कुछ, शेठ जी से कहा, तो शेठ जी ने कहा मैं क्या सुनाऊं, संत लोग बैठे संतों की सभा है, मैं तो एक वैश्य बालक हूँ, क्या सुनाऊं मैं आप लोगों के सामने। तो हरि बाबा बोले आप कौन है क्या है वो तो आप जाने भगवान जाने, परंतु आपके आते ही सभा का रंग बदल गया, सभा का ढंग बदल गया, नशा सभा यत्र संति वृद्धा वृद्धा सुते ये न बदन्ति धर्मम, नशा सभा यत्र संति वृद्धा, जहां बूढ़े पुरुष नहीं है वो सभा सभा नहीं है, वो छोरा है इकट्ठे हुए खेल है, खेल तमाशा है, सभा नहीं है वो, सभा कब होगी कि वृद्ध पुरुष हो गए, वृद्ध कौन, ज्ञान वृद्धि से शिष्य शिष्यगा शिष्य किंग रहा, वृद्ध होता है धर्म में, वृद्ध होता है कोई अवस्था में, वृद्ध होता है कोई बल में, वृद्ध होता है कोई कोई बुद्धि में वृद्ध होता है, कोई विद्या में वृद्ध होता है। अभी वृद्ध कई होते हैं, बड़े होते हैं ना, विद्या में बड़े हैं, धन में बड़े हैं। धनवान आदमी आ होते असर पड़ता है उसका, बूढ़े बड़े आते तो असर पड़ता है उसका। ऐसे गुणों में, योग्यता में, पद में, अधिकार में ये मिनिस्टर है साहब, वो वृद्ध होते हैं। परंतु ये सब वृद्ध है जो ज्ञान वृद्ध है, ज्ञान तत्व ज्ञान है समझ में, उस वृद्ध के सामने सब शिष्य किंकर है, शिष्य किंकर है, लाश है सब। सबसे बड़ा वो होता है जो ज्ञान वृद्ध है, जिसको बोध हुआ है, तत्व ज्ञान है, ऐसा वृद्ध आता है। उस वृद्ध के आते ही एक सभा और तरह हो जाती है, जैसे अंधेरा हो और प्रकाश कोई कर दे, बिजली का प्रकाश हो जाए तो सभा और तरह हो जाती है, प्रकाश दिखने लग जाता है अलग अलग। इस तरह से भीतर के भाव दिखने लग जाते हैं उन तत्वों के, जीवन मुक्तों के पास में। तो वो लाभ कौन लेता है? जो आज्ञा पालक है, मन के अनुकूल चलता है, वे कहे जैसे ही काम करता है तो उसको वो तत्व मिलता है, और नहीं करता उसको तत्व नहीं मिलता। कर्णवास में सत्संग हो रहा था, मैं वहां पर था, मेरी मौजूदगी की बात है। तो एक सीताराम बाबा थे, वो चिमटा बजा करके सीताराम 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 कीर्तन किया करते थे। तो वो कीर्तन सुनाया, फिर वो कैसे मैं तो जाता हूँ। तो गोविंद गाड़ी ने कहा कि यार ठहर जाओ, आप थोड़ा ठहर जाओ। तो कहते मेरे काम है, बहुत जरूरी है, जाना है। कहते समय हो तो ठहर जाओ, एक दुवार कैसा कह दिया। फिर कहता नहीं मैं तो जाऊंगा। शिव जी का अच्छी बात जाओ। वो कहते ही महाराज ऐसा बदला जो उनका भी चेहरा बदल गया, सभा में फर्क पड़ गया। ये मेरी देखी हुई बात है प्रत्यक्ष। अगर उनकी बात कहने के वो ठहर जाओ तो एक विलक्षण शक्ति आती है, ताकत आती है, निर्दय मर्जी तुम्हारी। शुरू में भगतनाथ जी संत थे, ये शेषाओ सुनी हुई बात है। तो भगतनाथ जी महाराज थे तो अकाल पड़ गया, गायों भूखा मरने लगी। तो किसी ने कह दिया कि महाराज ये जो दो भाई आते हैं सेठ, इनके यहाँ बड़ी बागर है घास की, बहुत इकट्ठा घास किया हुआ है, यहाँ खोलते तो गाय जी जाए, बहुत अच्छा घास का संग्रह है। तो कह दिया, वो भी कह दिया कि तुम्हारे कुछ बागर लगे। हाँ महाराज, बागर किस लिए है? कि गायों के लिए, हमारी बिक्री करने के लिए नहीं, व्यापार के लिए नहीं है, गायों के लिए है। जब आवश्यकता पड़े तो गायों को चराना है, गायों के लिए ही है। तो भाई गायों के लिए है तो गायों भूखी है। कहते महाराज अभी तो समय है, अभी तो कुछ समय है, कुछ मिलता है। तो बाबा जी ने कहा समय कहाँ है भाई, कर दो। तो उसमें मैं खोली नहीं, बगैर नहीं खोली। वहां से रवाना हुआ, दूसरे कह रहे हैं बाबा जी किसी को कहते ही नहीं, तेरे को कह दिया, तेरे समय कह दिया। फिर उन जाकर हमारे खोलो, कहते तो भाई तेरी मर्जी। वो बात तो गई, थोड़े दिनों में राम नाम से तो बोल गया, शरीर मर गया हुआ। कि समय है, समय कट है भाई, समय कट है, समय ना मैं है। तो उन्हें कहने में और बचना में कुछ ताकत होती है विलक्षण। अरे कहना करे तो एक विलक्षणता आ जाती है उसमें, नहीं करे ठीक है। फिर जयराम जी वहां मिलना कुछ नहीं है। फिर तो उनकी जबान में ताकत होती है, उनके भाव में ताकत होती है, विलक्षण शक्ति पारमार्थिक एक तत्व होता है। आज्ञा पालन करते ही तत्व मिलता है, विलक्षणता से अवस्था बदल जाती है आदमी की, विचित्रता आ जाती है उसमें। जैसे अवतार होता है ना, ऐसे विद्वान है वो पढ़ाता है तो पढ़ने वाले में अवतार हो जाता है। संत महात्मा है उनकी आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञा पालक में अवतार हो जाता है संतों का। वे महात्मा वैसे दिखने लगते हैं, उनकी वैसी बुद्धि विलक्षण हो जाती है। बिना पढ़े लिखे उनमें अलौकिकता आ जाती है। बिना साधन के सिद्धि हो जाती है, तत्व आ जाती है। दयाल जी महाराज की बात सुनते हम खराब है, श्री दयाल जी महाराज हुए, दयालदास जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज के शिष्य, तो ये जितने शिष्य उनकी परीक्षा लेते हैं 12 महीनों से होली के माले इकट्ठे हो जाते, तो तुम्हारे कहाँ तक शब्द हुआ है, क्या तक कैसे हुआ कैसा हो कहते थे। तो शिष्य आपस में कुछ खटपट भी होती ही है, ईर्ष्या भी होती है, तो कहते इतना ही क्यों हुआ, इतना 12 महीना में इतना क्यों हुआ, इतना क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया वो कहा। तो दयाल जी महाराज के सेवा में रहते थे भगवान दास जी साधु भाई, वो महाराज सेवा ही करते, भजन में बहुत कम आप न करते थे साधारण, पर विशेष करके महाराज की सेवा ही करते थे। तो किसी ने कह दिया कि महाराज आप इतने जोर से ताड़ना करते हो, भगवान दास जी कहाँ तक शब्द हुआ है, कि भगवान दास जी ये होकर सिद्ध आदर करे, ये 10वां द्वार है, पट 10 बार शब्द हो गया उसी क्षण, वर्ष लग जाए जिन वर्ष करते सेट हो गया उसके, वो भगवान दास जी का स्थान है, मथानी में भी रहे, मथानी उनका रामदेवरा है, तो ऐसे करते हुए। तो संत महात्माओं की कृपा होते हुए क्या नहीं होता है, असंभव को संभव कर दे बता, ये तो रहे जग जो उपकारी है दो, एक तो भगवान और एक भगवान प्यारे भक्त, अलौकिक शक्ति उनमें होती, ताकत होती है, उनको नहीं होता है ऐसा मानो कि मेरे में शक्ति है। शेर जी ने कहा मैंने शेर जी से प्रार्थना करी, मैंने शक्ति बल थी, हमारे को मत जनाना, कुछ शक्ति हो बिल्कुल है, तो उनको जानते भी है कोई जानते भी नहीं, उनमें ताकत होती खुद को पता नहीं उनको। जैसे हनुमान जी महाराज है तो सबने कहा अंगद के मैं चाहूं पारा पार जा सकता हूँ, परंतु तो फिर आने में पता नहीं कैसे होगा। तो जहां मुवंत कह सुना हनुमाना का चुपचाप रहे हो भलवाना, तुम बलवान हो चुपचाप कैसे बैठे हो, क्या मैं बोले ही नहीं फिर। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना, ऐसे करके तुम बड़े बलवान हो, पवन पुत्र पवन के समान हो, बुद्धि विवेक आदि तुम्हारे सब गुण है, हनुमान जी बोलते बूढ़े बोले ही नहीं, ऊपर बैठे रहे कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते हुए पर्वताकारा, राम जी का काम करने के लिए तुम अवतारा, तुम राम काज करी हुए को आतुर, राम जी काम करने के लिए उनके जैसे प्यास लग जाए जल के लिए आतुर हो जाए, भूख लग जाए तो अन्न के लिए आतुर हो जाए, ऐसे हनुमान जी महाराज राम जी का काम करने के लिए आतुर थे। तो राम काज लगी तो बहुत सारा लोग सुनते भाई पर्वताकार आप बोलो भाई, राम बंध मैं पूछू तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही, अब बताओ क्या करना है। त्रिकुटाचल पर्वत के ऊपर वर्षी भी लंका सक गई, तो त्रिकुट पर्वत उठा लो इधर यहाँ ला कर रख लू सभी समृद्ध लंका, कहना ऐसा नहीं करना, तो कहो जो करूँ कैसे करूँ, नहीं तुम जाओ सीता की खबर लेकर के आओ, और खबर लेकर आओ और उसमें सीता जी क्या दशा है कैसी है ऐसी खबर जाग राम जी को सुनाओ, फिर राम जी बंदरों के सहित आएंगे और असुरों पर विजय करके सीता को लेकर के जाएंगे, ये काम पीछे होगा, अभी कुछ नहीं करना है, अब तो केवल खबर जाना है, वहां खबर लेकर आ जाना है। तो ठीक खबर ले आएंगे, चले गए वहां, कूद कर उस पार चले गए। अब वहां वो लंक लेने पर रोक दिया, भीतर जाने वाला लंका है लंक लेने रोक दिया, कहां जाते हो, मोर आहार लंका कर चोरा, लंका में चोर आता है ना वो मेरा आहार है, मैं खा जाते हूँ उसको। हनुमान जी महाराज को रोक दिया, हनुमान जी महाराज मुठिया एक ताई कभी आने रुदिर बमत नहीं था नी, खून बहने लग गया मुंह से और गिर पड़ी। तो वो कहते मैं बात भाग्य बहुत था, देख हुआ राम का दूत था, राम जी के दूत दर्शन किया, मेरा भाग्य है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिले जो सुख लव सत्संग, ये सत्संग वहां मुक्का लगा एक उस तरह से बोलती है लंकनी, कि स्वर्ग और अपवर्ग सुख है एक तरह रखो और एक सत्संग का रहो मात्र एक तरफ तो सत्संग का सुख अधिक होगा। ये सुख बताया सुख मुंह से तो खून गिर रहा है शरीर बमत ऐसा सुख है ऐसा आनंद है आज। अब विचार करो लगता भूखा क्यों मारा वो बिचारी पहरे पर थी उसका काम है पहरे में जो जाए बीच में उसको रोकने का तो मुक्की क्यों मार दी। वो कहती है कि लंका में चोर होता है वो मैं अराहार होता है सीता जी को चोर करके आया रावण उसको तुमने कुछ नहीं कहा मैं जाता हूँ चोर के बन जा मैं क्या चोरी करी तेरी चोरी करी नहीं और ऐसे रोकती है चोरी कर आया हुआ वो बैठा है राजा राजी खुशी कहते चोर आहार आहार मेरा आहार खाई क्यों नहीं गई नहीं तो खिलाया मुक्का झूठ बोलती है। फिर उसने कह दिया कि भी जब ब्रह्मा जी ने लंका मनाई और कहा तब कहा कि बिकल वो जब कपि के मारे तब जाने से निश्चर सका तो बिकल हो जाएगी बंदर के मारने से तो समझा लंका के नाशक्ष सब मरेंगे खत्म हो जाएगा सभी। तो आज भगवान का दूत मिल गया है कवि के मारे तो खुशी मनाती है वो तो महाराज संत महात्माओं के स्पर्श से आनंद हो गया लंका को खून बह रहा है मुंह सर को के तात स्वर्ग अपवर्ग सुख स्वर्ग का सुख अपवर्ग मुक्ति का सुख ये सब सुख एक तरफ कर दिया जाए तो लव सत्संग के समान नहीं हो सकता इतना सुख होता है। ये सुख बताया उसने न गवेला भी न स्वर्ग ना पुनर्भाव भगवत संग संघर्ष मरता नाम के ऊँचा से संसार के बहुत चीज ही क्या है उससे बढ़कर लोभ है। तो ऐसे संत महात्माओं का कहना मिल जाए कोई बात मिल जाए उसके अनुसार चले तो मतलब उसमें विलक्षणता आ जाती है अलौकिकता आ जाती है। रामायण में आता है जब भरत जी महाराज जा रहे हैं चित्रकूट उस समय में निषाद राज भूख यहाँ पर पहुंचे उन्हें देखा कि ये भरत से इतना कट के लेकर जा रहा है राम जी विजय करेंगे तो तैयारी कर दी सबने जीवन शुरू से उतर रही हूँ मैं जीता रहूँ तब तक सरस्वती की गंगा जी के पार नहीं होने दूंगा मैं और सब कह दिया हाँ बजाओ ढोल बजाओ बस महाराज वे शस्त्र शस्त्र धारण करके बक्सर पहन करके सब तैयार हो गए युद्ध करने के लिए और बजाओ ढोल के ढोल बजाया झुंझाऊ ढोल होता झुंझाऊ झुंझाऊ वाले बजते बहगा बैग बहगा बैग बहगा वो ढोल बजने लगा तैयारी हुई कितना कर छींक भाई बाब में छींक हो गई तो क्या बहुत अच्छी है बहुत बढ़िया है अपने विजय है सब तरह। बूढ़े ने कहा कि ऐसा नहीं है धार नहीं हुई लड़ाई होगी नहीं है इसी गई है उसने सुकुन विचार ठीक कहा तो उसने हजरात कह भाई बस ठीक है सस्ता करे सस्ता सस्ता करी पछता है मूढ़ा जल्दीबाजी करता है तो पीछे उसको पछताताप करना पड़ता है तो ठहर जाओ उसी को ठहर जाओ फिर सब ठहर गए ठहर करने के बाद मैं जाता हूँ पहले तो भेंट लेकर गए पहले तो मूल कंद मूल फल और मीन पीन पाठीन पुराना भर भर कर कहारा नाना भर भर तो सबसे ले गए कंद मूल फल भी ले गए खग मृग ले गए मछलियां भी मारी हुई सब ये ले गए सभी। तो इतना अर्थ क्या था कि भरत जी महाराज कैसे हैं सात्विक हो तो सात्विक चीज लेंगे राजसी चीज लेंगे तामसी चीज लेंगे तो परीक्षा हो जाएगी कैसा इनका अंतकरण कैसा है। लेकर गए बात भरत जी ने कहा नहीं है बात ये भेंट देना मेरा अधिकार नहीं है भेंट ले सकते हैं राजा महाराजा है राजा है श्री राम जी मैं राजा थोड़े ही हूँ मैं तो दास हूँ राजा महाराजा मेरे को भेंट देने का अधिकार नहीं है तो चुप रहो अब युद्ध करना नहीं है मैं रघुनाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो वो राम जी के विरुद्ध होने से इतने तेज हो गए फिर महाराज मिले। अब वो निषाद जब आता है और देखता है महाराज को भरत जी महाराज है शत्रुघ्न जी उनको देखता है और फिर जो राणिया आ रही है उधर, कौशल्या है, कई कई है, सुमित्रा जी है, इनकी पालकियां आ रही है, वो दंडवत करता लंबा पड़ करके माता जी नमस्कार करते है। तो वहाँ एक विचित्र बात हुई है, वो क्या है कि वो निषाद राज को देखते ही लक्ष्मण याद आते हैं, सबको देखता है कि लक्ष्मण आ गया, क्या लक्ष्मण जी याद आती है, देखते लक्ष्मण याद आते हैं। कारण क्या, रात भर सत्संग हुआ, सत्संग करने से भरत जी के निषाद राज के भाव लक्ष्मी में प्रवेश हो गए, तो लक्ष्मण को देखते ही भरत निषाद राज को देखते ही लक्ष्मण की याद आती है। असली जो शिष्य होता है वो गुरु की ताकत है, गुरु का अवतार हो जाता है उसमें, तो गुरु की तरह लोगों को देखने लगता है और गुरु जी याद आने लगते हैं, उसको देखते ही उसमें वो अवतार हो गया। विद्वान होता है वो विद्वान का पढ़ता है, वो पढ़ने में विद्या का अवतार हो जाता है, तो वैसे ही विद्वान बन जाता है वो, इसलिए संत महात्माओं का अवतार हो जाए, वो सीख तत्परता से सुने तो उनमें जो ताकत है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो सबकी जो सामर्थ्य उसमें आ जाती है। बिना कहे सुने बिना किए स्वतः स्वाभाविक, क्योंकि वो सन्मुख हो गया ना, जैसे दीपक के साथ नहीं गड़ाने से वो भी दीपक हो जाता है, वो भी जलने लगता है, पारस के छूटते ही लोहे का सोना हो जाता है। तो पारस और संत में बड़ो अंतर हो जान, पारस में संत में बड़ा अंतर है, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समा, संत तो संत बना देते हैं, पारस पारस वही बनाता है, पारस लोहे को सोना बना देता है, मन उस सोने में वो ताकत नहीं कि दूसरे लोहे को सोना बना दे, संत महात्मा में तो वो ताकत है जो उसके कहने के अनुसार वो करे, पारसों की एक परंपरा लग जाती है, विलक्षणता आ जाती है उनमें, परंतु किस्म आती है वो अनुकूल होते हैं। और पारस के साथ भी पारस कह रहा गुण किसा पलटा नहीं लोहा, कहते बीज बीज रहा का बीज रहा बिचोहा, कहे तो पारस नहीं, पारस ने लोहा छोया लोहा का सोना नहीं हुआ, या तो वो पारस नहीं है, कोई मिट्टी का ढीला है, कोई कुछ पत्थर है, पारस नहीं है, अरे पारस है तो छुआ नहीं, बीच में कोई केला का पत्ता दे दिया उसमें आड़ लगा दिया होगा, आड़ लगा दी नहीं होता वो, ऐसे संत महात्मा से हृदय खोल करके और उनकी आज्ञा के अनुसार मिले करे बात, तो उसमें विलक्षणता आ ही जाती है, जबरदस्ती आ जाती है। बात कुछ दूसरे से बात तो मेरे मन में आती है कि जो सत्संग करने वाले हैं, वर्षों से सत्संग सुनने वाले अपने साधारण आदमी जो सत्संग करने वाले हैं, वे भक्त पर ऐसी बात कह देंगे, बड़े बड़े पंडित लोग नहीं कैसे ऐसी बात कह देंगे, ऐसी गीता की बात कह देते, सत्संग की बात कह देंगे, तो क्या है वो सत्संग का असर है, सत्संग से विलक्षणता उसमें आ जाती है। मैं तो कहा था यहाँ जोधपुर चातुर्मास किया तब यहाँ से जाने लगे तो शेर जी का सुनो, तो हॉल में मैंने कुछ बातें सुनाई, मैंने बात कही वो याद आएगी मेरे को, मैंने कहा आप जो लोग हो सब हो पत्थर हो, पत्थर पत्थर के क्या रंग लगे, 100 वर्षों जल में रहे जो चकमकते आग और पर भीतर से कोरा कोरा भीतर ही नहीं, ऐसे आप पत्थर हो, परंतु हो पत्थर गंगा जी के, गंगा जी में पत्थर पड़े गोल गोल बन जाते हैं और गंगा जी छोड़ लगे ऐसे सुंदर लगे हमारे, कोई लाल कोई सफेद कोई काला, ऐसे सुंदर मालूम दे गंगा जी तरंग में, लूटते लूटते गंगा जी के किनारे जो रहता है ना, ये पत्थरों का रहता है, इस बार कड़ा रहता है, बहुत कठोर रहता है वो पत्थर, टूट टूट के बना हुआ है, तो पत्थर टूटते हैं कट 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 कट, तो पत्थरों का बना हुआ यही रहता है, तो पत्थर घटते घटते घूल जैसे बड़े सुंदर गंगा जी के किनारे, मैं तो सोनेगा मैं काम पड़ा सोया हूँ, मैं तो गंगा जी बह रही है उसके पास में लेते मैं सो गए, तो गंगा जी गए तो गंगा जी के जल की आवाज आती है, एक भीतर में खरखर खरखर कर पत्थर लुढ़ते रहते हैं उनकी है, वो दूसरे लुढ़ते पत्थर घोल हो जाते हैं बड़े सुंदर, ऐसे गोल घड़ने से जल्दी नहीं होते जैसे पत्थर हो जाते हैं, ऐसे सत्संग में पड़े रहने से उन पुरुषों में भी विलक्षण बातें आ जाती है, बिना सीखे बिना पत्थर, कोई उद्योग करता है कोई परिश्रम करता है क्या सीखता है, परंतु पड़े रहते प्रवाह में परिवार में मिला के वो आपसे आप गोल गोल हो जाते हैं। इसलिए सत्संग में पड़े रहने से सत्संग का लाभ ले विलक्षण आदमी हो जाते हैं, उनमें विचित्रता आ जाती है। जो मन के अनुकूल बन जाए और आज्ञा पालन करे इसारे उसमें तो अलौकिक शक्ति विलक्षण आती है, अलौकिक शक्ति ताकत आ जाती है, विचित्र आश्चर्य जैसी आ जाती है। लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या हो गया भाई, पढ़ा हुआ तो सब नहीं दिखता, योग्यता भी नहीं दिखती, फिर भी इसमें कैसी विलक्षणता आ गई। तो वो संत महात्माओं की कृपा से आती है, पर वो कृपा होती है सन्मुख हो जीव वो जब ही सन्मुख होता है तो वो ताकत आती है, सन्मुख नहीं हो तो ताकत वो पकड़ नहीं सकता। ऐसा कोई संत महात्माओं की ये नहीं है कि सन्मुख होता मैं दूंगा और वो नहीं दूंगा, ऐसा पक्षपात नहीं होता है, परंतु वो पकड़ सकता ही नहीं, बिना सन्मुख कैसे पकड़ेगा। ये वर्षा बरसती है, ये बूंदे पड़ती है, ये तो सीप के बूंदे, एक तो भुजंग के मुख पर जर्जर हो जाता है, एक पत्थर से चमरा आ जाते कमल के पत्ते पर पड़ता है मोती तक दिखता है, स्वाति नक्षत्र में सातों सती सुख से कुक्ष प्रथम तत्ते मोतीगम, स्वाति नक्षत्र में और सीप मुख रह मुख रमा जो बूंद पड़ती है वो मोती बन जाता है, उसी दम मोती एकदम साफ साफ। तो इस तरह से जो सन्मुख होता है आज्ञा पालन करता है और उसी के अनुसार जीवन बनाता है, उसमें वो मुक्ता आ जाती है, मोती बन जाता है, जो शब्द गए वो सब विलक्षण हो जाता है एकदम ही, तब जाए थे मोती का। इस तरह से श्रद्धा अनुभव है वो ले लेता है, क्योंकि वचनों को लेकर उनके भावों को लेकर बहुत विलक्षणता स्वीकार कर लेता है, हो जाते उसमें तीज चीज बन जाती है। जाए से मौक्तिक प्राय राधव मत उत्तम गुणा संसर्ग को जाए से, तो ऐसे सन्मुख होने से उनकी आज्ञा पालन करने से रुख के अनुसार चलने से बहुत लाभ होता है, विचित्र लाभ होता है, अलौकिक लाभ होता है। तो लाभ तो हम लेना चाहते हैं और कहना करना चाहते नहीं, तो लाभ कैसे होगा। अब ये ना करोगे तिरस्कार करो तो दंड होगा, फिर और जगह भी लाभ होना मुश्किल हो जाएगा और जगह भी, क्योंकि वो ग्राहक ही नहीं है उसे कैसे होगा, वो उल्टा चलता है, आड़ लग जाती है अपने जन्म जन्म मरने में तक आड़ लग जाती है। तो आड़ नहीं लगा हुआ कहने के अनुसार चले देखो आप बिल्कुल शक्ति आती है कि नहीं आती, तत्काल आती है शक्ति, शक्ति तो आती ही है, लेने वाला सन्मुख होता है ले लेता है, सन्मुख नहीं होता नहीं लेता है। ऊपर से जल गिर रहा है, वर्षा आई है और नाले में जल गिर रहा है, कोई घड़ा सामने रखे तो भर जाए, घड़ा ऊंचा रखे तो सूखा हो जाए, घड़ा सूखा धारा के नीचे घड़ा है और सूखा, ये कोई पूरी को नहीं कारण के उल्टा रख दिया, क्या होगा। ऐसे अपने वहां पर सन्मुख हो जाए तो रहने, अगर उल्टा हो जाए तो जयराम जी गीला ही नहीं होता गड़ा, वर्षा बरस जाए जल कितना बह जाए नाला ऊपर से गिरे ऊपर से, परंतु वो लेते ही नहीं, सन्मुख हो गए आज्ञा पालन करे उसके अनुसार हो जाए अनुकूल हो जाए। देखो आप विलक्षणता आती है सत्य स्वाभाविक, यू अच्छे तो दिखेगा परंतु ग्रहण नहीं कर सकेगा, पकड़ नहीं सकेगा, वो अच्छी बात होने पर ठीक होने पर भी उनके भीतर में आत्म बैठेंगे नहीं, पकड़ सकेगा नहीं। तो आज्ञा पालन करने से मन के अनुकूल चलने से वो चीज आती है स्वतः स्वाभाविक, बिना लिए बिना ग्रहण किए आप साहब आती है। वो संतों की बात सुनाई थी मैंने कि महाराज आप संतों के साथ रहे, राजा ने पूछा कि संतों को हमने लिया नहीं, हम कोई कस्तूरी की डबिया है वो नहीं लेने पर भी गंध रह जाती है, चिकनास रह जाता है, ऐसे चिकनास रह जाएगा हमने लिया नहीं, तो न लेने पर भी चिकनास रहता है सुगंधी रहती है, ले तो भी तो महाराज विलक्षण बन जाता है एकदम ही अलौकिक बात हो जाती है, ऐसी विलक्षण बातें है। केवल संग से दर्शन से दर्शनादेव साधु का चंद्रमा जैसे संत दर्शन पात घटा रही श्रद्धा तो भर रही है, कैसे संत दर्शन पात घटा रही, कृष्ण करने से पाप दूर हो जाते हैं, निर्मलता आ जाती है, शुद्धि आ जाती है, अलौकिकता आ जाती है। विघ्न तो हरेक को है, पर जैसा जैसा अंतःकरण होता है, जितना वो सन्मुख होता है उतना उतना वो लाभ लेता है। लाभ बरोबर नहीं होता। सतगुरु भी था बूठा इंद्र सम कमी नाखी को इंद्र से बचता है, कोई नहीं बन वैसा ही फल नहीं। जैसी भूमिका हो, जैसी भूमिका होती है, जैसा बीज होता है उसके अनुसार ही होता है। अब वही पानी वही बरसता है, मतीरे में वही है, बिस्लूंगा होता है तस्तूंगा, उसमें भी बरसात वही होती है। पर फर देखो तो बीज में कितना फर्क है, वो तो मान शहर की तरह खड़ा होता है, मीठा मतीरे का मीठा होता है। जल दो वही है, पृथ्वी दो दो नहीं है, बीज दो है, अलग अलग है। पृथ्वी वो पृथ्वी में ऐसे निकलता है, वो भी जहर की तरह ही। मिर्ची में मिर्ची का तीक्ष्ण पड़ा भी पृथ्वी से ही आता है, और आम में मीठा पड़ा भी पृथ्वी से ही आता है, और ये बमूल शूला है बड़ी बड़ी, तो वो भी मिर्ची और जल से ही आती है। पर जैसा बीज है वैसे वैसे लेता है, तो जितना वो सरल होता है उतना ऐसी बात है। बीज में वो ताकत नहीं है कि बढ़िया ले सके, वो तो बीज के अनुसार लेता है। पर मनुष्य में ताकत विलक्षण है, ये अगर भाव बड़ा बना ले सीख तरह से तो कपट खटाई पड़ती। जल पे सरस बिकाए, देखो प्रीति की रीत भल, बिलग हो तो जस जस जाए, कपट खटाई पड़ती। दूध बहुत अच्छा है, कपट भी खटाई भी तो कपट कर देता है ना, फिर वो दूध में वो रस नहीं रहता, फट जाता है। दूध फाट घर कहा गया, मन फट कर गई प्रीत, वो प्रीति और तत्व तो वो नहीं रहता है, वो अलग हो जाता है। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि अधिक से अधिक लाभ ले, कहीं सत्संग मिल जाए, कोई संत महात्मा मिल जाए तो उसे अधिक से अधिक लाभ ले, दिल खोले। हमारे अनुविचार तुझसे आत्मा तो हमारी एकादश में लिखा है, कपट न रखे मन में कोई, कपट गांठ मन में रही सदना, कपट गांठ मन में नहीं, सुबह सरल स्वभाव नारायणता भक्ति लगी किनारे ना हो, कोई कपट नहीं कोई गांठ नहीं है, सीधा सरल स्वभाव है। सरल स्वभाव ने मन कुटिला ही तथा लाभ संतोष सदाई, तो विलक्षणता आ जाती। ऐसी बात है भाई, मैं संतों सुनी हुई बातें, कई उदाहरण सुने हुए हैं हमारे, कई सुने हुए तो बातें ठीक दिखती है, अपने अनुभव करके देखो, जितना जितना अनुकूल होता उतनी उतनी विलक्षणता उसमें आ ही जाएगी। नारायण 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 नारायण।